13 हम चाकर रघुवीर के। गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति काव्य के सगुण राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि तथा प्रमुख कवि हैं। भक्ति आंदोलन के सामाजिक पृष्ठभूमि तथा वर्गीय आधार की चर्चा करते हुए गजानन माधव मुक्ति बोध ने भक्ति के निर्गुण धारा के बरक्स सगुण धारा तथा उसमें भी उसकी राम भक्ति शाखा की एक महत्वपूर्ण सीमा की ओर संकेत किया है। मुक्तिबोध का कहना है कि क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि ग्राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक भी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कवि निम्न जातीय शूद्र वर्गों से नहीं आया? क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि कृष्ण भक्त शाखा के अंतर्गत रसखान और रहीम जैसे हृदयवान मुसलमान कवि बराबर रहे आए, किंतु राम भक्त शाखा के अंतर्गत एक भी मुसलमान और शूद्र कवि प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप से अपनी काव्यात्मक प्रतिभा को विशद नहीं कर सका? जबकि यह एक स्वतः सिद्ध बात है कि निर्गुण शाखा के अंतर्गत ऐसे लोगों का को अच्छा स्थान प्राप्त था। अपने द्वारा उठाए गए सवालों के भीतर प्रवेश करते हुए मुक्तिबोध इस स्थिति के कारणों की पहचान करने का भी प्रयास करते हैं। वे लिखते हैं, निष्कर्ष यह कि जो भक्ति आंदोलन जनसाधारण से शुरू हुआ और जिसमें सामाजिक कट्टरपन के विरुद्ध जनसाधारण की सांस्कृतिक आशा आकांक्षाएं बोलती थी, उसका मनुष्य सत्य बोलता था, उसी भक्ति आंदोलन को उच्च वर्गों ने आगे चलकर अपनी तरह का बना लिया और उनसे समझौता करके और फिर उस पर अपना प्रभाव कायम करके और अनंतर जनता के तत्व को उसमें से निकाल कर उन्होंने उस पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मुक्तिबोध के अनुसार भक्ति आंदोलन के उच्च वर्गों के प्रभुत्व में आने का ही परिणाम है कि जो आंदोलन 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक एक बड़ी सांस्कृतिक घटना के रूप में समूचे देश में विद्यमान रहा, उसे अंततः सिकुड़कर समाप्त हो जाना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास इस भक्ति आंदोलन के अंतिम बड़े कवि हैं। बात को विशेषतः हिंदी में भक्ति के स्थान पर श्रृंगार रस का वर्चस्व दिखाई पड़ा। हिंदी साहित्य का रित काल जिसके पतनशील रूप का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भक्ति आंदोलन के विषय में मुक्तिबोध की जो धारणाएं यहाँ व्यक्त हुई हैं, प्रस्तुत पुस्तक के भक्ति आंदोलन संबंधी पहले निबंध में हमने भी उसे इसी रूप में देखा और व्याख्यायित किया है। उसके इसी रूप के तहत हमने उसे मध्यकाल की एक महान सामाजिक सांस्कृतिक घटना कहा है, जिसकी अन्य युगों में कोई मिसाल नहीं मिलती। वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म और संप्रदाय से परे जिस मनुष्य सत्य की उद्घोषणा करते हुए भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था, यह सही है कि भक्ति आंदोलन के आचार्यों और प्रवक्ताओं ने इस मनुष्य सत्य को भक्ति तथा आध्यात्म के क्षेत्रों में ही वरीयता दी। उसे सामाजिक जमीन पर लाने की पहल उनकी ओर से नहीं हुई, फिर भी भक्ति तथा अध्यात्म की जमीन पर मनुष्य मात्र के समान होने की इस घोषणा तथा उसके अनुरूप बने माहौल का यह परिणाम तो हुआ ही कि न केवल शूद्रों तथा अंत्यजों के बीच से हमें संतों की एक शानदार परंपरा मिली, जिन शूद्र तथा अंत्यज वर्गों से संत आए उन वर्गों से जुड़े लोगों के मन में अपनी हीन सामाजिक स्थिति से उभरने की एक महती आशा का भी संचार हुआ। उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव का भाव भी जागा। भक्ति की निर्गुण धारा में समाज के इन साधारण जनों की जो व्यापक भागीदारी दिखाई पड़ती है तथा निर्गुण संतों की जो वाणियां हैं, वे हमारे उक्त कथन को पुष्ट करती हैं। निर्गुण भक्ति के उपरांत सगुण भक्ति की जो धारा सामने आई, कतिपय बुनियादी बातों के समान होते हुए भी उसके वर्गीय आधार तथा कम से कम हिंदी भाषी प्रदेश में उसके जनाधार में जो फर्क है और जिसकी ओर मुक्तिबोध ने इशारा भी किया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अवतारवाद तथा पौराणिक देवी देवताओं के सगुण भक्ति के अंतर्गत प्रवेश ने उनकी उसकी अंतर्वस्तु पर अपने गहरे निशान छोड़े हैं और इसी का परिणाम है कि वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म और संप्रदाय का तिरस्कार करने वाली भक्ति की पूर्ववर्ती धारा न केवल पृष्ठभूमि में चली गई, परवर्ती सगुण धारा में वे तमाम बातें मुख्य और महत्वपूर्ण बनकर सामने आईं। पूर्ववर्ती संतों ने जिनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी भाषी प्रदेश के साधारण जनों के बीच भी जिनकी अत्यंत गहरी और व्यापक पैठ तथा प्रतिष्ठा है, उत्तर भारत के जन समाज के बीच जिनके द्वारा रामचरितमानस एक काव्य ग्रंथ के रूप में नहीं एक धर्म ग्रंथ के रूप में मान्य और समादृत है। मध्यकालीन संतों और भक्तों की बिरादरी में कहां और किस रूप में प्रतिष्ठित किया जाए? सवाल मात्र यही नहीं है, सवाल और भी हैं। मसलन सवाल गोस्वामी जी को अपने सामाजिक धार्मिक आदर्शों के साथ जो व्यापक जन समर्थन प्राप्त है, जनसाधारण के हृदय और मस्तिष्क में उनका जो गहरा प्रभाव और पहुंच है, उसके कारणों की तलाश का भी है, उनकी शक्ति के स्रोतों को पहचानने का भी है, इस बात का भी है कि आखिर जनता की वह कौन सी दुख तिराग है जिसे अन्य संतों के बजाय तुलसीदास अधिक संवेदना के साथ पहचान और छू सके। जनता की वे कौन सी आशाएं, आकांक्षाएं और सपने थे तुलसीदास ने जिन्हें उसके मनोवांछित रूप में अपनी रचनाओं में प्रतिबिंबित किया। परिणाम तो साधारण जनता और व्यापक जन समाज के बीच उन्हें उस स्तर की प्रतिष्ठा मिली जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। इन तथा इन जैसे दूसरे सवालों के संतोषजनक हल हमें तभी मिल सकेंगे जब हम तुलसीदास तथा सगुण भक्ति संबंधी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उनके भीतर उतरेंगे। मुक्तिबोध का यह कहना सही है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का चरित्र निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति तक आते आते वही नहीं रह गया था जैसा कि अपने प्रादुर्भाव काल में और निर्गुण भक्ति की मुख्यता के समय में वह था। उनका यह कहना भी सही है कि उत्तर में निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जिस प्रकार शूद्रों, अंत्यजों, हिंदू मुसलमानों की व्यापक भागीदारी रही, कालांतर में सगुण भक्ति में वह सीमित हुई और सगुण राम भक्ति तक आते आते स्थिति यह हुई कि उसके अंतर्गत शूद्र, अंत्यजों से या मुसलमानों से एक भी महत्वपूर्ण रचनाकार सामने नहीं आ सका, किंतु इसके चलते निर्गुण भक्ति को स्वभावतः निर्दोष और प्रगतिशील मान लेना तथा सगुण भक्ति को सदोष तथा प्रतिक्रियावादी समझना सही नहीं होगा। जरूरत उत्तर में निर्गुण तथा सगुण भक्ति के साथ जुड़ी इस स्थिति के कारणों को तलाशने की है, न कि एकदम सरलीकरण करते हुए एक के चरित्र को प्रगतिशील तथा दूसरे के चरित्र को प्रतिक्रियावादी घोषित करने की, जिसे उत्तर में निर्गुण तथा सगुण भक्ति के रूप में प्रचारित किया गया उसमें अनेक बुनियादी बातों में समानता है। सगुण भक्ति धारा में आगे चलकर सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर जिस वैचारिक संकीर्णता का समावेश हुआ तथा अर्थ शून्य विधि विधानों तथा कर्मकांडों को जो प्रमुखता मिली, उसका कारण अवतारवाद, धर्मशास्त्रों एवं पौराणिक आख्यानों के प्रति सगुण भक्ति की भक्तों की निष्ठा तो थी ही, निर्गुण भक्ति के दौर में कमजोर हुई सामंतीय शक्तियों तथा अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों के चलते समाज में उच्च वर्गों के वर्चस्व का पुनरुत्थान भी था। उत्तर में सगुण भक्ति धारा के आविर्भाव तथा निर्गुण भक्ति धारा अपनी ऐतिहासिक भूमिका पूरी कर स्वयं अनेक प्रकार की असंगतियों से ग्रस्त हो चुकी थी। निर्गुण भक्ति की ये असंगतियां एक ऐसे सामाजिक माहौल के निर्माण में सहायक बनी जिसमें सगुण भक्ति को पनपने का पूरा अवकाश मिला। सगुण भक्तों ने इस नाजुक दौर में जनता के हृदय में विद्यमान शून्य को और उसकी आशाओं, आकांक्षाओं को पहचानते हुए भक्ति की जो धारा बहाई, वह निर्गुण भक्ति के दौर में मनुष्य सत्य तथा सामाजिक क्रांति दर्शिता को झुठलाने के बावजूद तथा वेद शास्त्र विहित समाज व्यवस्था की हिमायत करने के बावजूद अनेक स्तरों पर साधारण जन की आशा आकांक्षाओं से जुड़ी होने के नाते साधारण जन द्वारा न केवल स्वीकारे हुई, उसके बीच लोकप्रिय भी हुई। समाज के प्रभु वर्ग के जो आचार विचार, मान्यताएं और विश्वास निर्गुण भक्ति के दौर में भक्ति आंदोलन के ज्वार के समक्ष तिनकों की तरह ऊब डूब करते हुए इधर उधर बिखर गए थे, उस ज्वार के उतरते ही अनुकूल अवसर पाकर पुनः समाज की सतह पर आ गए और कालांतर में पुनः सामाजिक गतिविधियों तथा क्रियाशीलता के नियामक बन गए। सगुण कृष्ण भक्ति में उसके मूलवर्ती विषय कृष्ण की लीलाओं के गायन के नाते शास्त्रानुमोदित परंपरागत सामाजिक तथा धार्मिक विचारणा बहुत उदग्र होते हुए सामने नहीं आ पाई, किंतु सगुण राम भक्ति में उसे फलने फूलने का अवकाश मिला। अपने समय के सामाजिक माहौल की अव्यवस्था तथा दिशाहीनता को भांप कर गोस्वामी तुलसीदास ने रामानंद के राम मंत्र को साधते हुए राम भक्ति की जो स्रोतस्विनी बहाई, राम का और राम कथा का जो रूप जन समाज के सामने रखा, अनेक विद्वानों के अनुसार उसके फलस्वरूप न केवल समाज बिखरने और बर्बाद होने से बचा, उसे वह दिशा भी प्राप्त हुई जिसकी उस समय उसे सख्त जरूरत थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन विद्वानों में एक और सबसे महत्वपूर्ण है जिन्होंने मध्यकालीन समाज, विशिष्ट हिंदू समाज को व्यवस्था देने, बिखर जाने से रोकने एवं सही दिशा बोध कराने का श्रेय गोस्वामी जी को दिया है, अपने पुष्ट और ठोस तर्कों के आधार पर जिसकी चर्चा हम करेंगे। शुक्ल जी के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा ने उस समय भारतीय जनमानस के बीच अपनी ज्योति जगाई, जिस समय नाना संप्रदायों की खींचतान के कारण आर्य धर्म का व्यापक स्वरूप आंखों से ओझल हो रहा था। एकांग दर्शिता बढ़ रही थी। जो एक कोना देख पाता था वह दूसरे कोने पर दृष्टि रखने वालों को भला बुरा कहता था। शैवों वैष्णवों शाक्तों और कर्मठों की तू तू मैं तो थी ही, बीच में मुसलमानों से अविरोध प्रदर्शन करने के लिए भी अपर जनता को साथ लगाने वाला कई नाना पंथ निकल चुके थे, जिनमें एकेश्वरवाद का कट्टर स्वरूप, उपासना का नाटकीय रंग ढंग, ज्ञान विज्ञान की निंदा, विद्वानों का उपहास, वेदांत के दो चार प्रसिद्ध शब्दों का अनधिकार प्रयोग आज सब कुछ था। परलोक की व्यवस्थित करने वाली वह मर्यादा न थी जो भारतीय आर्य धर्म का प्रधान लक्षण है। जिस उपासना प्रधान धर्म का जोर बुद्ध के पीछे बढ़ने लगा वह उस मुसलमानी राजत्व काल में आकर, जिसमें जनता की बुद्धि भी पुरुषार्थ के ह्रास के साथ साथ शिथिल पड़ गई थी, कर्म और ज्ञान दोनों की उपेक्षा करने लगा था। ऐसे समय में इन पंथों का निकलना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। उधर शास्त्रों का पठन पाठन कम लोगों में रह गया था, इधर ज्ञानी कहलाने की इच्छा रखने वाले मूर्ख बढ़ रहे थे, जो किसी सतगुरु के प्रसाद मात्र से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार बैठे थे। अतः सतगुरु भी उन्हीं में से निकल पड़ते थे जो धर्म का कोई एक अंग नोच कर एक ओर खड़े होते थे, और कुछ लोग झांझ खंजड़ी लेकर उनके पीछे हो लेते थे। दंभ बढ़ रहा था। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, ऐसे लोगों में भक्ति को बदनाम कर रखा था। ऐसे लोगों ने भक्ति को बदनाम कर रखा था। भक्ति के नाम पर ही वे वेद शास्त्रों की निंदा करते थे, पंडितों को गालियां देते थे और आर्य धर्म के सामायिक तत्व को न समझकर लोगों में वर्णाश्रम के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे थे। यह उपेक्षा लोक के लिए कल्याणकर नहीं थी। जिस समाज में से बड़ों का आदर, विद्वानों का सम्मान, अत्याचार का दमन करने वाले शूरवीरों के प्रति श्रद्धा आदि भाव उठ जाए वह कदाप फल फूल नहीं सकता, उसमें अशांति सदा बनी रहेगी। भक्ति का यह विकृत रूप जिस समय उत्तर भारत में अपना स्थान जमा रहा था, उसी समय उत्तर भारत में भक्त और गोस्वामी जी का अवतार हुआ। उन्होंने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुलाचार, वेद विहित कर्म, शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान इत्यादि सबके साथ भक्ति का पुनः सामंजस्य स्थापित करते आर्य धर्म को छिन्न भिन्न होने से बचाया। ऐसे सर्वांगदर्शी लोक व्यवस्थापक महात्मा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के चरित्र से बढ़कर अवलंब और क्या मिल सकता था। आचार्य शुक्ल का तत्कालीन समाज की दशा के बारे में यह अभिमत गोस्वामी जी द्वारा वर्णित कलयुग के आधार पर बना है, जो गोस्वामी जी की सोच के साथ साथ आचार्य शुक्ल की भी सोच को ज्ञापित करता है। हम कह चुके हैं कि आचार्य शुक्ल के संस्कारी मन पर हिंदू आचार व्यवस्था आर्य धर्म की गहरी छाप है। विवेक पुष्प पुष्ट मानस के तहत वे भिन्न सोच को अभिव्यक्त देते हैं, किन्तु संस्कार उन्हें अपनी जमीन पर ले आते हैं। बहरहाल यह शुक्ल जी का अपना अभिमत है। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का गोस्वामी जी और उनके समय के समाज से संबंधित अभिमत भी उक्त अभिमत से बहुत भिन्न नहीं है। इतना जरूर है कि आचार्य द्विवेदी ने ये बातें एक तो विशेषतः गोस्वामी जी के साक्ष पर कही है, दूसरे वे अपनी बात के प्रति उस गहरी संशक्ति को सूचित नहीं करते जो शुक्ल जी हमें दिखाई पड़ती है। आचार्य द्विवेदी ने लगभग शुक्ल जी के तर्कों के आधार पर गोस्वामी जी को लोकनायक माना है। आचार्य द्विवेदी के अभिमत का भी कुछ जायजा लें। तुलसीदास की जो पुस्तकें प्रमाणित मानी जाती हैं, उनके देखने से स्पष्ट होता है कि जिस काल में उनका जन्म हुआ था उस समय उन्होंने जिस समाज को देखा था वह बहुत ऊंचे आदर्शों पर नहीं चल रहा था। इसके उपरांत लगभग शुक्ल जी की कही बात को गोस्वामी जी के साक्ष्य पर अपने ढंग से प्रस्तुत करते हुए आचार्य जी का कहना है। इस प्रकार तुलसीदास के युग में हिंदुओं के समाज का फौलादी ढांचा जहां एक तरफ अतिरिक्त सावधानी के कारण अत्यधिक कसा जा रहा था, वहां उसी कसाव के परिणाम स्वरूप धार्मिक और साहित्य क्षेत्र में यथास्थिति मर्यादा कस के चोटें भी की जा रही थी। कुछ आगे चलकर आचार्य द्विवेदी जी का कहना है, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि को लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त था। लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, वैराग्य और गारहस्थ का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृत का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनाशक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चांडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय, रामचरितमानस के आदि और अंत दोनों छोरों पर जाने वाली परकोटियों को मिलाने का प्रयास है। इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरित को चुना, इससे अच्छा चुनाव हो भी नहीं सकता था। बातें वही हैं, किंतु आचार्य द्विवेदी ने उन्हें कबीर तथा निर्गुण मत पर अपने लिखे हुए को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक कहा है। इन दो ख्यात विद्वानों के अलावा डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, जो मार्क्सवादी समीक्षा जगत में अपनी खास हैसियत रखते हैं और गोस्वामी जी के विषय में अपने समान विचारों वाले दूसरे विद्वानों से भिन्न मत देने के नाते अलग से चर्चा की योग्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वस्तुतः परंपरा के मूल्यांकन को लेकर हिंदी के मार्क्सवादी विद्वान शुरू से ही बहुत साफ दृष्टि नहीं रखते रहे हैं, जिसके परिणाम भी अच्छे नहीं रहे। यह तो बहुत आगे चलकर परंपरा के मूल्यांकन को वैज्ञानिक और समुचित मार्क्सी आधार पर प्रतिष्ठा देने के प्रयास हुए, किंतु दृष्टि अब भी पूरी तरह से निर्भ्रांत नहीं है। रामविलास शर्मा कदाचित अकेले मार्क्सवादी समीक्षक हैं अपनी पीढ़ी में, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास पर एकांगिता तथा एकायामी होने का खतरा उठाते हुए भी प्राय सकारात्मक ही लिखा है। एकांगी या एकायामी होना डॉक्टर शर्मा की समीक्षा दृष्टि की विशेष रूप से व्यावहारिक समीक्षा में एक बड़ी सीमा है। यह मार्क्सवाद भी नहीं है, कारण मार्क्सवाद समीक्षा के बुनियाद प्रतिज्ञा अंतर्विरोधों के बीच से वस्तु की पहचान है। अंतर्विरोधों को ढक कर वस्तु को देखना उसे अधूरा देखना या गलत देखना है। फिर भी डॉक्टर शर्मा मार्क्सवादी समीक्षा में अकेले हैं, जिन्होंने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को तैयार किया है। हिंदी ही नहीं, भारतीय साहित्य के इतिहास का मंथन करते हुए साहित्य के स्थायी मूल्यों को परखा तथा पहचाना है। उस साहित्य की, हिंदी साहित्य की उस विरासत को उद्घाटित किया है जिसके पीछे महान रचनाकारों की साधना रही है तथा जिसके संरक्षण की जरूरत है। यही नहीं, हमारे साहित्य की ह्रासशील परंपरा भी उनकी निगाह से ओझल नहीं हुई है और उसे रेखांकित करते हुए उन्होंने उसके प्रति हमें तथा आगामी पीढ़ियों को सावधान किया है। गोस्वामी तुलसीदास पर उनका लिखा भी हमारे लिए अतिशय मूल्यवान है। उनके जिन सकारात्मक पक्षों को उभारा है वे तुलसीदास के कृतित्व के वास्तव में जीवंत अंश हैं। उन्होंने तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्यों को उजागर किया है। गोस्वामी जी की किसान संवेदना से हमें परिचित कराया। साधारण जन के साथ गोस्वामी जी की संवेदनात्मक एकात्म को उनकी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में विज्ञापित किया। मनुष्य के नाना रूपों को उद्घाटित करने वाली गोस्वामी जी की बारीक निरीक्षण क्षमता तथा उनके समक्ष की शक्तिशाली काव्यत्व के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया। गोस्वामी जी के साहित्य को परखने की नई दृष्टि उन्होंने हमें दी, जिसके लिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। डॉक्टर शर्मा की सीमा वहाँ है जहाँ वे गोस्वामी जी की विचारों तथा उनकी रचनाशीलता के नकारात्मक पक्षों के प्रति या तो मौन दिखाई पड़ते हैं अथवा उनका कमजोर डिफेंस प्रस्तुत करते हैं। उनकी यह सीमा उनकी व्यावहारिक समीक्षा में प्रायः हमें दिखाई पड़ती है। दिलचस्प तथ्य यह कि परंपरा के मूल्यांकन में अनेक स्थलों पर एकांगी हो जाते हुए भी डॉक्टर शर्मा ही एकमात्र समीक्षक हैं जिन्होंने हमें परंपरा के मूल्यांकन की सही दृष्टि भी दी है। सिद्धांत के स्तर पर जहाँ तक अन्य मार्क्सवादी समीक्षकों, विशेषतः रामविलास जी की पीढ़ी के मार्क्सवादी समीक्षकों का सवाल है, हमने संकेत किया है कि परंपरा के मूल्यांकन को लेकर उनका नजरिया बहुत साफ नहीं रहा है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। मसलन रांगे राघव हो, शिवदान सिंह चौहान हो, यशपाल हो या अन्य, गोस्वामी तुलसीदास उनके मूल्यांकन में एक प्रतिक्रियावादी रचनाकार के रूप में ही हमारे समक्ष उजागर हुए हैं। धर्म की अफीम से जनता को भोली भाली अशिक्षित जनता को भरमाने वाले प्रतिक्रियावादी विचारों को का प्रचार करने वाले वर्ण धर्म आश्रमों की व्यवस्था के हिमायती वेद शास्त्र विद परंपरागत आचार विचारों के आग्रही ब्राह्मणवादी दकियानुस तथा महंत, किसी ने भी तुलसीदास के सामाजिक विचारों उनकी सोच की सीमाओं को उजागर करने के साथ साथ इस सवाल से टकराना जरूरी नहीं समझा कि आखिर जनता के मन मस्तिष्क पर गोस्वामी तुलसीदास की जो गहरी पकड़ तथा पहुंच है उसका राज क्या है, गोस्वामी जी की रचना के कालजयी होने का रहस्य क्या है, सीमाओं के होते हुए भी उनकी शक्ति के भी कोई आयाम है, और यदि है तो वे क्यों और कहां हैं। जरूरत मध्यकालीन समाज के संदर्भ में उनकी रचनाशीलता के वैज्ञानिक मूल्यांकन की थी, न कि उन्हें तथा उनकी रचनाशीलता को उनके युग से काटकर अपने युग में ले आने तथा अपनी मानसिकता के बरक्ष उन पर टिप्पणी करने की। जरूरत गोस्वामी जी की सोच की सीमाओं को उजागर करने तथा उनकी रचनाशीलता के उस समर्थ पहलू को भी उजागर करने की थी जहां उनकी सोच का सकारात्मक प्रतिफलन हुआ है। प्रसन्नता की बात है कि मार्क्सवादी समीक्षकों के बाद की पीढ़ी ने यह कार्य किया। परंपरा के मूल्यांकन को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए अपेक्षित संजीदगी, वस्तुनिष्ठता और खुलेपन के साथ तुलसी आधुनिक वातायन से नामक अपनी किताब में डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ ने और लोकवादी तुलसी में विश्वनाथ त्रिपाठी ने मध्य युग के समूचे संदर्भ में गोस्वामी जी को रख कर देखते हुए डॉक्टर मेघ ने उनके विषय में यह साहसपूर्ण किंतु नितांत वस्तुनिष्ठ टिप्पणी की कि जब वे समाज के पूरे रंगमंच को देखते देखते तथा भोगते भोगते यथार्थवादी एवं व्यावहारिक भी हो जाते हैं, दोहावली कवितावली हनुमान बाहुकार, तब वे कलिकाल की गर्दन मरोड़ देते हैं। अपने जीवन के परवर्ती चरण में तुलसी आध्यात्मिक और स्वप्न दृष्टा के बजाय धार्मिक और यथार्थ दृष्टा हुए हैं। उन्होंने अंततः घोषित ही किया है कि सारे समाज का तंत्र आधार पेट अर्थात आर्थिक शक्ति है कवितावली। यह उनके समाज दर्शन की महत्तम सिद्धि है जो उन्हें कबीर तक से बहुत आगे ले जा सकती है। आर्थिक दरिद्रता को इतना भोगने समझने वाला मनुष्य, दरिद्रता के सामाजिक परिणामों को इतना सटीक विश्लेषित करने वाला समाज पुरुष और दरिद्रता से इतनी प्रगाढ़ नफरत करने वाला लोक कवि तुलसी के अलावा सारे मुस्लिम मध्यकाल में दूजा नहीं है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर मेघ ने तुलसीदास को वर्णाश्रयी वेदशास्त्र विहित मर्यादा प्रधान सामाजिक सोच को उजागर न किया हो, उन्होंने गोस्वामी जी की सामाजिक सोच के इन पहलुओं पर जमकर खुलासा किया है और उनके युग संदर्भों को उन्होंने विश्लेषित भी किया है, किंतु मूल्यांकन की मार्क्सवादी दृष्टि को सही रूप में पेश करते हुए उन्होंने गोस्वामी जी के मन तथा उनकी रचना के उन पहलुओं को भी उभारा जहां वे लोक से उसके सुख दुख से साधारण जन की आशा आकांक्षाओं से एक प्राण तथा एक मन होते हैं, अन्याय की धज्जियां उड़ाते हैं, पाखंडियों का पर्दाफाश करते हैं, धर्म की ध्वजा उठाकर चलने वाले धूर्तों को बेनकाब करते हैं और सीधे लोकचित्त में उतरकर उसे प्रतिबिंबित करते हैं। उनके मन उनसे प्रेरित उनकी रचना के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं का जायजा लेते हुए उन्हें उनके युग के बीच रखकर उनकी शक्ति तथा सीमाओं की पहचान करते हुए तब डॉक्टर मेघ उन पर कोई निर्णायक राय नहीं करते हैं। महज इस आधार पर गोस्वामी जी को खारिज कर देना कि वे अपने युग की विचारधारा का समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा का अतिक्रमण नहीं कर पाते, क्योंकि वे धर्म तथा धर्म आधारित परंपरागत विचार व्यवस्था के हामी हैं, क्योंकि वे राम के ईश्वरत्व का जादू साधारण जनता के भोले भाले अज्ञानी मन पर थोपते हैं और इस तथ्य को नजरअंदाज करना कि उनमें अंतर विरोध भी है, वे संवेदनशील करुणार्द्र साधारण जन से संवेदनात्मक एकात्म रखने वाले दृष्टा तथा यथास्थनिष्ठ रचनाकार एवं भक्त भी हैं। मूल्यांकन का सही नजरिया नहीं माना जा सकता। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी किताब में गोस्वामी जी के सकारात्मक पहलुओं को उनकी परंपरागत सोच तथा पुरातन पंथी मानसिकता के बीच तलाश किया है। जरूरत गोस्वामी जी हूँ अथवा मध्यकाल के अन्य संत तथा भक्त, उनके इसी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की है। खेद का विषय है कि हिंदी में अभी भी गोस्वामी जी या उनके रामचरितमानस के नाम मात्र से विह्वल होकर उनकी चर्चा करने वाले तथाकथित समीक्षकों का ही बाहुल्य है। उनके युग के तथा स्वतः उनके वैचारिक अंतर विरोधों के बीच से उनकी सीमाओं तथा उनकी शक्ति की पड़ताल करने के प्रयास कम हुए हैं। यह कार्य परंपरा के सही मूल्यांकन का कार्य मार्क्सवादी समीक्षकों के कार्यभार का हिस्सा है, कारण वहीं इसे अंजाम दे सकते हैं और वस्तुतः मध्यकाल के संत और भक्त कवियों पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उन्हीं के द्वारा हुआ भी है, परंपरा की संरक्षा वहीं कर सके हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में भाववादी दृष्टि से किए गए संत भक्त कवियों तथा तुलसीदास के मूल्यांकन का ही परिणाम है कि गोस्वामी जी आज अपनी शक्ति के सही संदर्भों से वंचित पंडा पुरोहिती मानसिकता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, धर्म के अधिष्ठाता उनका व्यवसाय कर रहे हैं। गोस्वामी जी के मूल्यांकन में सरलीकरण से बचने की भी जरूरत है। इस सरलीकरण के शिकार अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोग भी हुए हैं। यह तो डॉक्टर मेघ हैं जो साहस के साथ किसी बिंदु पर गोस्वामी जी को कबीर से आगे बढ़ा हुआ घोषित कर सके, अन्यथा प्रगतिशीलों की आम धारणा के तहत गोस्वामी जी कबीर से आगे तो क्या उनके समकक्ष भी नहीं माने गए। कबीर जिस समाज के अंग थे, जिस परिवेश में उनका लालन पालन हुआ, उनके मन मस्तिष्क पर उस समाज और उस परिवेश के गहरे निशान हैं। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अपमान और चली आ रही समाज व्यवस्था के तहत जो नरक कबीर के वर्ग वर्ण जात तथा संप्रदाय को मिला था, उसके दंश को उन्होंने साक्षात भोगा और सहा था। उनका संस्कारी होना तो दूर, चालू मान्यता के अनुसार वे संस्कार च्युत थे। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज्ञानी और पंडित होना तो दूर की बात। फिर भी कबीर को पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमने तथा हमारे जमाने ने जिस रूप में पहचाना, वे परंपरागत पंडिताई और ज्ञान का बोध ढोने वालों से कई गुना वास्तविक पंडित और ज्ञानी निकले। पोथी पढ़ने वालों की तुलना में आंखों देखे यथार्थ के गहन दृष्टा निकले। समूचे मध्यकाल में अपनी बिरादरी के संतों के साथ उन तमाम लोगों का विरोध करते हुए जो मनुष्य के वर्ग वर्ण धर्म जाति और संप्रदाय में बांट कर देखते थे, एकमात्र मनुष्य सत्य के इंसानियत और इंसानी संस्कृति के एकमात्र प्रवक्ता होकर सामने आए, समन्वय की सारी समझौता परस्ती को ठुकराते हुए एक मानव धर्म की दुहाई देने वाले बने, जिन्होंने परंपरागत समाज व्यवस्था की बुनियाद पर वर्णाश्रमी मानसिकता पर प्रहार करते हुए अपने वजूद का परिचय दिया। प्रचलित धर्मों के साथ जुड़े सारे कर्मकांडों, रीतियों, नीतियों, आचार विश्वासों को लानत मानी, यह सब कबीर का उनके चिंतन और उनकी रचनाशीलता का सबसे उज्ज्वल पहलू है, हमारी और हम जैसों की स्थायी विरासत है। गोस्वामी तुलसीदास से विचारों की इस जमीन पर, सामाजिक आदर्शों के इस स्तर पर कबीर बहुत आगे हैं, किंतु जिस तरह अपनी तमाम परंपरागत सोच के बावजूद गोस्वामी जी के चिंतन और उनकी रचनाशीलता के शक्तिशाली भाषण पहलू भी हैं, उसी प्रकार अपनी तमाम सामाजिक अग्रगामिता के बावजूद कबीर के चिंतन की, उनकी रचनाशीलता की अपनी सीमाएं तथा अंतर विरोध भी हैं। हमें उन्हें भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विचारों के अनेक बिंदुओं पर गोस्वामी जी और कबीर समान हैं। एक जैसी सोच वाले गोस्वामी जी की नारी के प्रति अंदाज दृष्टि की जितनी चर्चा है, कबीर के नारी संबंधी विचारों पर लगभग कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, जबकि कबीर के आध्यात्मिक चिंतन में नारी का न केवल कोई वजूद नहीं है, वह हेय मानी गई है। पतिव्रता तथा सती नारी पर कबीर तथा गोस्वामी जी समान रूप से मुग्ध हैं। गोस्वामी जी में यदि नारी की निंदा है तो नारी चरित्रों का उज्ज्वल आख्यान भी। उनके यहाँ नारी अपने सभी रूपों में माँ, भगनी, बेटी, पत्नी, प्रेमिका हमसे मुखातिब होती है और हमें संवेदनात्मक स्तर पर अपने से जोड़ती भी है। कबीर के यहाँ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ रहस्यवाद भी है, संसार को माया और मिथ्या मानने वाला तत्व चिंतन भी है, दर्शन तथा आध्यात्म के स्तर पर परंपरागत सोच का वही स्वीकार है जैसा गोस्वामी जी में है। फिर जहाँ तक कविता का सवाल है, मनुष्य के इंद्रिय बोध की बारीकियों और विविधता का, मनुष्य के भाव जगत की गहराई व्यापकता और उसमें होने वाले उद्वेलनों का सवाल है, गोस्वामी की कविता कबीर से बहुत आगे की चीज है। वह जीवन की समग्रता की कविता है, संसार सागर के रूप तरंगों में हिलोरों लेने वाली कविता है, वहाँ सब कुछ दृश्य बनकर सामने आया है। वह हमारे जीवन साक्षात्कार की कविता है, हमारे राग द्वेष, हमारे अपने सुख दुख, हमारे अपने अनुभवों में रची पकी कविता है। कबीर के यहाँ कविता की संसार का संसार सीमित है। कबीर की कविता उनके भक्ति संबंधी पदों में उनके भक्तिभाव को पारदर्शी रूप में प्रस्तुत करती है, उसके अलावा उनमें मात्र विचारों का ही बाहुल्य है। वे कितने भी उदात्त क्यों न हों, और हम सब जानते हैं कि कविता मात्र विचार नहीं हुआ करती, यह कबीर के काव्यत्व की सीमा है। अपनी सामाजिक सोच में वे तुलसी से आगे हैं, पर कविता जहां मानव जीवन की समग्रता अथवा जीवन के व्यापक भाव बोध और इंद्रिय बोध से जुड़कर ही कविता बनती है, वहां कुछ तो सगुण कविता की अपनी प्रकृति शक्ति के नाते और कुछ गोस्वामी जी की अपनी भाव प्रतिभा के नाते कबीर तुलसी से आगे क्या उनकी समकक्षता भी नहीं पाते। कबीर और तुलसी की तुलना यहाँ हमारा इष्ट नहीं है, जो कुछ ऊपर कहा गया है वह प्रसंग वश ही कहा गया है। तुलसी ने सगुण राम भक्ति की कविता रची है, उनके समय के जिस समाज का हवाला उनकी कविता के साक्ष्य पर आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी ने दिया है, उसकी बारीक छानबीन में न जाकर हम इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि सगुण भक्ति धारा को जनता में जो व्यापक समर्थन मिला उसका एक महत्वपूर्ण कारण उस समय की सामाजिक स्थिति जरूर थी। निर्गुण भक्ति के परवर्ती दौर में तथा उसके कारण उत्पन्न सामाजिक विसंगतियां भी उसके मूल में थी। अलख और अरूप की तुलना में जो लक्षित है रूप तथा गुण सम्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करना सरल होता है। निर्गुण अनुभव और अनुमान का विषय है, सगुण अपने रूप गुण के साथ साक्षात सामने है। फिर कबीर पहुँचे हुए संत तथा साधक हो सकते हैं, किंतु उनके समय में तथा उनके बाद सचमुच समाज में छद्म साधकों तथा साधनाओं की ऐसी बाढ़ आई, इल्हामी लोगों का इतना बड़ा जमाव हो गया कि साधारण और अज्ञ जनता उनके प्रभाव में दिग्भ्रमित होने लगी। आज के हमारे युग में जब इल्हामी बाबा लोगों की एक पूरी की पूरी जमात तंत्र मंत्र टोना टोटका करने वालों की पूरी बिरादरी पढ़ी लिखी जनता को बेवकूफ बना रही है, ठग रही है, तो मध्यकाल में इनके चलते कैसी सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई होगी इसका सरलता से अनुमान किया जा सकता है। धर्म तथा भक्ति के नाम पर होने वाले अत्याचारों की इस माहौल में त्रस्त जनता के मन प्राणों को शीतल करने की उनकी धार्मिक आध्यात्मिक भूख को शांत करने है और सगुण भक्त कवियों ने जब ईश्वर के सगुण साकार रूप को उनके लोकरंजक तथा लोकरक्षक के रूप को उनके क्रियाकलापों के साथ सामने रखा तो साधारण जनता का सगुण भक्ति धारा की ओर उन्मुख हो जाना स्वाभाविक ही माना जाएगा। यह सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। सगुण भक्ति के जनता के बीच अपना स्थान बना लेने के उपरांत उसके साथ कुछ पक्षों के नाते समाज में परंपरागत धार्मिक सामाजिक रूढ़िवाद को ताकत मिली। अर्थ शून्य और आडम्बर प्रधान जर्जर कर्मकांड तथा रीति नीति आचार विश्वास प्रचलित और दृढ़ हुए। साधारण जनता के भोले भाले मन को भरमाया गया। उच्च वर्गों द्वारा सगुण भक्ति का इस्तेमाल समाज में पुनः अपना और अपनी सोच का वर्चस्व कायम रखने के लिए किया गया यह और बात है, परंतु वास्तविकता यह है कि सगुण भक्ति के आविर्भाव की परिस्थितियां तत्कालीन परिवेश के बीच ही विद्यमान थी और उसे आना ही था।